ओम शांति। राजयोग के प्रथम सत्र में कल आप सभी ने स्वयं का सही परिचय प्राप्त किया। अब तक परमात्मा की याद में मन एकाग्र नहीं होने का एक कारण कल के सत्र से आप सभी ने समझा कि हम अपने आप को ही नहीं जानते थे, खुद को देह समझते रहे, जिस देह भान के कारण ही मन भटकता है। हम कह सकते हैं कि देह अभिमान मन की चंचलता का मूल कारण है, क्योंकि जैसे ही हम आत्मविस्मृत होते हैं, खुद को देह समझने लगते हैं और देहभान में आने से ऑटोमेटिक देह के संबंधों से, प्रवृत्ति से, पदार्थों से और इस भौतिक जगत से मन और बुद्धि आकर्षित हो जाते हैं। इसलिए मन भटकने लगता है। तो प्रथम सत्र से अगर हम रोज 3 अभ्यास करते रहे, खुद को आत्मा समझना, आत्मस्मृति का अभ्यास, आत्मदृष्टि से देखना, हरेक को आत्मा की दृष्टि से देखना और आत्मधर्म में स्थित होकर कर्म करना, ये तीसरा अभ्यास। हम सबका स्वधर्म शांति और पवित्रता है। हमें हर कर्म शांति से, शुद्धि से, सोच समझ कर ज्ञान स्वरूप बनकर करना है। तो हम हर कर्म को श्रेष्ठ बना सकेंगे। हम ये दृढ़ता करें कि कोई भी कर्म गुस्से से, स्वार्थ से, जल्दबाजी में, बेसमझी से नहीं करना है। अगर ये 3 अभ्यास बार बार प्रतिदिन हम करते रहेंगे तो बहुत जल्दी अपनी कॉन्शियसनेस को चेंज कर सकेंगे, बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस बन सकेंगे। सोल कॉन्शियस जैसे जैसे बनते जाएंगे, ऑटोमेटिक हमारा नेचुरल अटेंशन परमात्मा की ओर जाएगा। अब हमें ये जानने की आवश्यकता है कि वो पिता परमात्मा कौन है, जिनको जन्म जन्मांतर से हम याद करते रहे हैं, ढूंढते रहे हैं, जिसे हम ईश्वर, अल्लाह, गॉड, खुदा, प्रभु, परमेश्वर कहकर याद करते रहे हैं। बेशक हमें ये स्पष्ट है कि परमात्मा एक है और ये विवेक की बात भी है कि परम, सुप्रीम, अल्टीमेट अथॉरिटी एक ही हो सकती है, दो नहीं हो सकती, अनेक नहीं हो सकती। इसलिए हम कहते भी हैं कि गॉड इज वन, सबका मालिक एक कहते हैं। अंडरस्टूड है परमात्मा एक है तो उनका सत्य परिचय भी एक ही होना चाहिए। आज एक परमात्मा के बारे में अनेक मतें हैं, अनेक मान्यताएं हैं, जिसको श्री राम में श्रद्धा है वो कहेंगे श्री राम ही भगवान है, जिसको श्री कृष्ण से प्यार है वो कहते हैं श्री कृष्ण ही परमात्मा है, कोई नेचर को गॉड समझते हैं। चारों ओर प्रकृति का जो अपार सौंदर्य है जिसको हम कुदरत कहते हैं, परंतु कई प्रकृति को ही परमात्मा, नेचर को ही गॉड समझ लेते हैं, कोई आत्मा को परमात्मा समझते हैं, अपने आप को भगवान कहलाते हैं, शिवोहम ब्रह्मोहम कहते रहते हैं, कोई सब में परमात्मा है, तेरे में, मेरे में, कण कण में, सब में भगवान है, ऐसी भावना रखते हैं। तो एक परमात्मा के बारे में अनेक मान्यताएं हैं, अनेक मतें हैं। ये अनेक मतें ही सिद्ध करती हैं कि परमात्मा का सही परिचय हम नहीं जानते हैं। तो स्वयं परमात्मा आकर ब्रह्मा मुख से हमें अपना सत्य परिचय देते हैं। अब तक अनेक ऋषि मुनि, धर्मात्माएं, महात्माएं हुए, हरेक ने अपनी साधना अनुसार, अपनी पवित्रता की ऊंचाई अनुसार, अपना अपना चिंतन करके अपनी अपनी मतें दी, जिसके कारण अनेक मतें हो गई और इंसान मुंझ गया, सत्य तो मिला ही नहीं। इसलिए स्वयं परमात्मा को सृष्टि पर आना पड़ता है और वे आकर हमें अपना सत्य परिचय देते हैं। स्वयं परमात्मा ने ब्रह्मा मुख से हमें परमात्मा के सत्य परिचय की सत्य परिभाषा बताई है। हम किसको परमात्मा का सत्य परिचय कहेंगे? क्योंकि हर कोई अपनी अपनी मत को सत्य में खपाने की कोशिश करते हैं, तो सत्य परिचय की सत्य परिभाषा क्या है? पहले उस परिभाषा को हम समझेंगे। मैं 5 बातें आपको बताऊंगी। पहली बात, परमात्मा उसे कह सकते हैं जिसे विश्व के मुख्यतः सभी धर्म मान्य करे, कुछ माने दूसरे न माने, उसको परमात्मा नहीं कह सकते हैं। परमात्मा कोई एक धर्म, कोई एक देश, कोई एक जाति समाज के पिता नहीं है। परमात्मा समग्र विश्व के पिता है, सर्व आत्माओं के परम पिता है। इसलिए परमात्मा का सत्य परिचय उसे कह सकते हैं जिसे मुख्यतः सभी धर्म की आत्माएं मान्य करती हैं। दूसरी बात, परमात्मा उसे कह सकते हैं जो जन्म मरण के चक्र से न्यारे हो। हम सब जानते हैं कि जो जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु भी अवश्य होती है। हम कहते हैं जो आया है सो जाएगा, जो शरीर धारण करते हैं वे शरीर छोड़ते भी हैं, जो जन्म लेते हैं प्रकृति के बंधन में बंधते हैं, क्योंकि वास्तव में शरीर भी क्या है, प्रकृति के 5 तत्वों से बना हुआ है। इसलिए जो जन्म लेते हैं प्रकृति के बंधन में बंधते हैं, स्थल और काल के बंधन में बंधते हैं। जो जन्म लेते हैं कर्म बंधन में बंधते हैं, क्योंकि आत्मा शरीर धारण करने के बाद एक क्षण भी कर्म किए बिगर रह नहीं सकती है। इसलिए कर्म बंधन में बंधते जाते हैं, देह संबंधों में बंधते हैं। बच्चा पैदा होते ही परिवार का सभ्य बन जाता है, वो किसी का बेटा है, पोता है, भाई है, संबंधों के बंधन में बंधते जाते हैं। जो जन्म लेते हैं सुख दुख के बंधन में बंधते हैं, जो भी कर्म हम करते हैं उसका फल भोगने के लिए हम बाध्य हो जाते हैं। इसलिए परमात्मा उनको कहेंगे जो जन्म मरण के चक्र से न्यारे हैं, जो सभी बंधनों, सभी प्रभावों और सभी लेपों से मुक्त हैं। इसलिए परमात्मा के बारे में हम कहते हैं कि वे सदा मुक्त हैं, सदा स्वतंत्र हैं। तीसरी बात, परमात्मा उसे कह सकते हैं जिनके ऊपर और कोई आत्मा नहीं है, जो उनके माता पिता, शिक्षक, गुरु, स्वामी, शेठ बन सके। वे स्वयं ही परम सुप्रीम ऊंचे से ऊंचे है, उनके ऊपर और कोई आत्मा नहीं है, इसलिए हम उनको परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु कहते हैं। पिताओं का पिता, शिक्षकों का शिक्षक, गुरुओं का गुरु, नाथों का नाथ, पतियों का पति उसे कहते हैं। उनके ऊपर और कोई आत्मा नहीं है। चौथी बात, परमात्मा उसे कह सकते हैं जो सदा अपनी स्थिति में, अपने गुणों में, अपने कर्तव्यों में परम है, सदा सर्वोच्च, अपरिवर्तनशील, एक रस है। ऐसे नहीं है कि आज परम है, धीरे धीरे मध्यम अधम हो जाएंगे, नहीं। हम मनुष्यात्माओं के गुण, कर्म, स्थिति बदलते रहते हैं। परमात्मा सदा अपने परम गुणों में, परम स्थिति में, अपने परम कर्तव्यों में स्थित है। इसलिए केवल परमात्मा की महिमा में हम कहते हैं कि वे सदा पावन है, सदा मुक्त है, सदा शिव है। सदा शब्द केवल परमात्मा की महिमा में ही लग सकता है। और पांचवी बात, परमात्मा उनको कह सकते हैं जो सर्वज्ञाता है और सदा दाता है। सर्वज्ञाता अर्थात ज्ञान के सागर है, नॉलेजफुल है, जो सृष्टि के आदि मध्य अंत, आलोक परलोक को जानते हैं, जो सारे ही सनातन सत्यों का ज्ञान देते हैं, इसलिए उसे ज्ञान का सागर कहते हैं। परमात्मा के लिए हम कहते हैं कि वे सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं। मनुष्यात्माओं के लिए हम कहते हैं कि मनुष्यात्माएं अल्पज्ञ है, हमारे पास लिमिटेड नॉलेज है, हम जानते हैं और भूल जाते हैं, हम स्मृति विस्मृति को प्राप्त होते हैं। तो परमात्मा के सत्य परिचय की, इस सत्य परिभाषा की पांचों ही बातें बुद्धि में रख कर अब आप सोचिए, सही अर्थ में किसको परमात्मा कह सकते हैं। भक्ति में हम भावना से अनेकों को भगवान समझते रहे। हरेक ने अपनी अपनी मान्यता भावना अनुसार अपने अपने इष्ट के मूर्ति प्रतिमा बना दिए और अनेक रूपों से परमात्मा को मानने लगे। परंतु भाइयों और बहनों, हम अब तक परमात्मा को मानते रहे हैं, परंतु यथार्थ रूप से जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं। तो परमात्मा के सत्य परिचय की इस परिभाषा को बुद्धि में रखकर अब आप विवेक से बताइए, क्या आप और मेरे जैसे साधारण मानव शरीरधारी आत्माओं को परमात्मा कह सकते हैं? कह सकते हैं? नहीं। तो सबसे पहली बात बुद्धि में ये स्पष्ट कर लीजिए कि कोई भी देहधारी मनुष्यात्मा को परमात्मा नहीं कह सकते हैं। हम मनुष्यात्माएं परमात्मा की याद से महात्मा, धर्मात्मा, पुण्यात्मा, देवात्मा बना सकते हैं, लेकिन परमात्मा नहीं बन सकते हैं। अनादि रूप से परम एक ही है, अनेक नहीं हो सकते हैं। इसलिए कोई भी देहधारी को परमात्मा नहीं कह सकते हैं। परमात्मा कोई बनता नहीं है, परमात्मा कोई पोस्ट, पोजीशन या डिग्री नहीं है जो इंसान मेहनत करके प्राप्त कर ले। परमात्मा कोई बनता नहीं है, अनादि एक परम आत्मा है ही, नए परमात्मा नहीं बनते जाते हैं। अंडरस्टूड है? दूसरी बात कि जो भी साधु सन्यासी हैं, ऋषि मुनि हैं, गुरु विद्वान पंडित आचार्य संत महंत जो भी हैं, हम उनको महात्मा कह सकते हैं, परमात्मा नहीं कह सकते। हम सब जानते हैं कि वे भी परमात्मा को याद करके, उनकी योग साधना करके ही महान बने हैं, इसलिए उनको परमात्मा नहीं कह सकते हैं। परमात्मा का सही परिचय न होने के कारण कोई थोड़ी भी रिद्धि सिद्धि चमत्कार दिखाते हैं, लोग उनको ही भगवान समझने लग पड़ते हैं। लेकिन परमात्मा कोई रिद्धि सिद्धि चमत्कार नहीं दिखाते, इसलिए वे महात्माएं हैं, परंतु परमात्मा उसे नहीं कह सकते हैं। तीसरी बात, जो भी धर्म स्थापक इस सृष्टि पर हुए हैं, जिन्होंने आकर अपने अपने धर्म की स्थापना का कार्य किया है, चाहे इस्लाम के आदि पितामह अब्राहम हैं या उसके बाद मोहम्मद पैगंबर हैं, यहूदियों के हजरत मूसा हैं, गौतम बुद्ध हैं, महावीर स्वामी हैं, यीशु ख्रिस्त हैं, गुरु नानक जी हैं, शंकराचार्य जी हैं, ये धर्मात्माएं हैं, परमात्मा नहीं है। इसलिए इन धर्म स्थापकों ने खुद भी स्पष्ट कहा है कि हम उस गॉड के मैसेंजर हैं, हम उस खुदा के पैगंबर हैं, हम परमात्मा के पुत्र हैं। इन धर्म स्थापकों ने अपने आप को परमात्मा नहीं कहा है, ये उनके फॉलोवर्स होते हैं जो समय बीतने पर अपने ही धर्म स्थापकों में सीमित हो जाते हैं, उस परम शक्ति परमात्मा को भूल जाते हैं। तो ये धर्मात्माएं हैं, परमात्मा नहीं है। और चौथी बात, बहुत विवेक से और निष्पक्ष भाव से हमें समझनी है कि हिंदू भाई बहने जिन भी देवी देवताओं को पूजते हैं, मानते हैं, वो देवात्माएं हैं, परमात्मा नहीं है। हिंदू भाई बहने तो 33 करोड़ देवी देवताओं को मानते हैं, चाहे श्री लक्ष्मी नारायण हैं, चाहे श्री कृष्ण राधे हैं, चाहे श्री सीता राम हैं, चाहे श्री अम्बा दुर्गा सरस्वती हैं, श्री गणेश हनुमान महाकाली हैं, जिन भी देवी देवताओं को हम पूजते हैं वो देवात्माएं हैं, परमात्मा नहीं है। देवी देवताएं अनेक है, परमात्मा तो एक ही है। इन देवी देवताओं को सभी धर्म की आत्माएं नहीं मानती हैं। इवन और धर्मों की बात छोड़े, क्या हिंदू धर्म के सभी संप्रदाय सभी देवी देवताओं को मानते हैं? मानते हैं? नहीं मानते हैं। आप जानते हैं चुस्त वैष्णव शिव शब्द भी नहीं बोलते हैं। आप यूपी बिहार साइड जाएंगे, राम के चुस्त भक्त कृष्ण के मंदिर में नहीं जाते हैं। तो ये देवी देवताएं हिंदू धर्म के सभी संप्रदायों को भी मान्य नहीं है। हम उन्हें विश्व के सभी धर्म की आत्माओं के परम पिता परमात्मा कैसे कह सकते हैं? हम इन देवी देवताओं के जन्म की, जीवन की, इवन मृत्यु की पूरी कथाएं गाथाएं सुनाते हैं, जो जन्म मरण के चक्र में आते हैं उनको परमात्मा नहीं कह सकते हैं। हम इन देवी देवताओं के माता पिता गुरु शिक्षक सखा बंधु पत्नी बच्चे बताते हैं। संबंधों के बंधन में बंधे हुए दिखाते हैं। हम इन्हें श्रेष्ठ कर्म करते हुए बताते हैं। हर देवी देवताओं की जीवन कहानी में यही बताते हैं कि वे आए ही असुरों का संहार करने, आतताइयों को मुक्त करने, संसार को नरक से स्वर्ग बनाने। हम उनको श्रेष्ठ कर्म करते हुए बताते हैं और इन श्रेष्ठ कर्मों के फल स्वरूप हम इन देवी देवताओं को स्वर्गीय सुखों को भोगते हुए दैवी राजाई करते हुए दिखाते हैं। उसी का यादगार आज तक इन देवी देवताओं को कितने न अमूल्य हीरे मोती सोने चांदी के वस्त्र अलंकार आभूषणों से सुसज्जित बताते हैं, जो उनके अपार अखुट स्वर्गीय सुखों का प्रतीक है। हम इन देवी देवताओं के मस्तक पर रत्न जड़ित सुवर्ण ताज बताते हैं, उनको सुवर्ण सिंहासन पर बैठे हुए बताते हैं, जो राज्य सत्ता का प्रतीक है। तो जो भोक्ता है उसे परमात्मा नहीं कह सकते हैं। परमात्मा की महिमा में कौन से विशेषणों का हम प्रयोग करते हैं, उनकी महिमा में कौन से विशेषणों का वर्णन करते हैं? हम परमात्मा के लिए कहते हैं कि वे अजन्मा है, अकर्ता है, अभोक्ता है, निराकार निरंजन उसको कहते हैं। तो बताइए, ऐसा कौन सा स्वरूप है जिसे विश्व के मुख्यतः धर्म स्वीकार करते हैं, जिनको स्वयं भू बताया गया है, कोई शारीरिक माता पिता नहीं बताए हैं, ऐसा कौन सा स्वरूप है? है कोई स्वरूप जिसे मुख्यतः सभी धर्म मानते, ऐसा कोई स्वरूप है। तो भाइयों और बहनों, मुंझने की बात नहीं है, परमात्मा शब्द ही परमात्मा का परिचय देता है। परमात्मा शब्द का संधि विच्छेद करें तो परमात्मा मीन्स परम आत्मा है, वो भी आत्मा। जैसे हम आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, वैसे परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है। परमात्मा रूप से परम नहीं है, रूप ज्योति बिंदु है। परमात्मा अपने गुणों से, स्थिति से, कर्तव्य से परम ऊंचेते उच्च है। इसलिए जैसे भौतिक शक्ति का मूल स्रोत अणु परमाणु अति सूक्ष्म है, उनकी शक्ति विराट है, ऐसे आध्यात्मिक शक्ति का इटर्नल सोर्स परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है। हम उनकी महिमा में कहते हैं कि रूप ज्योति बिंदु हैं, परंतु हैं गुणों के सिंधु सागर। चित्र में हर किरण में परमात्मा के गुणों और कर्तव्यों की महिमा लिखी हुई है। अब परमात्मा का ये दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप विश्व के मुख्यतः सभी धर्मों को भी मान्य है। देखो, हिंदू भाई बहने ज्योति बिंदु परमात्मा को ज्योतिर्लिंग शिवलिंग के रूप में मानते हैं, पूजते हैं। आप सभी जानते हैं समग्र भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग है। रामेश्वर में श्री राम जी को भी शिव का पूजन करते हुए दिखाते हैं। श्री राम के भी ईश्वर के रूप में, रामेश्वर के रूप में ज्योतिर्लिंग बताया जाता है। वृंदावन गोपेश्वर में आप जाएंगे, श्री कृष्ण जी को भी शिव के आगे नमन वंदन करते हुए बताते हैं। एक और विवेक से समझने की बात आपको बताते हैं कि इवन शंकर जी को भी शिवलिंग के आगे ध्यान अवस्था में बैठे हुए दिखाते हैं। शंकर जी को कहते ही हैं तपस्वी जोगी। वो किसके ध्यान में बैठे हैं? ध्यान तो हमेशा खुद से भी ऊंच से किया जाता है ना। शंकर जी तपस्या करते हैं, मीन्स उनके भी ऊपर परम चैतन्य शक्ति है जिसको ही परमात्मा कहा जाता है। तो अमरनाथ, काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, इवन नेपाल में पशुपतिनाथ के रूप में ज्योतिर्लिंग शिवलिंग का पूजन किया जाता है। परमात्मा कोई इतने बड़े लिंगाकार नहीं है, ये भक्ति में पूजन के लिए निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप परमात्मा का यादगार प्रतीक शिवलिंग ज्योतिर्लिंग बनाया गया। इसलिए हर शहर, गांव, गली गली, इवन जंगलों में शिवालय पाए जाते हैं। इतिहास आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि आदि भक्ति केवल निराकार ज्योतिर्लिंगम परमात्मा की जाती थी। मध्य युग में जब हम बॉडी कॉन्शियस बनते गए तो निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा में मन नहीं लगा सके, तो फिर प्रथम तत्वों की पूजा शुरू हुई, फिर अनेक देवी देवताओं की उपासना शुरू हुई। मुस्लिम भाई बहने स्पष्ट कहते हैं अल्लाह नूर है, वे एक निराकार को ही मानते हैं। नूर मीन्स प्रकाश, ज्योति स्वरूप उसे मानते हैं। और वे स्पष्ट कहते हैं कि परमात्मा कोई ये भौतिक प्रकाश बिंदु नहीं है, नूरे इलाही, इलाही मीन्स अलौकिक, अभौतिक, दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप है। हम हिंदी भाषा में कहते हैं परमात्मा दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप है, वे अपनी अरबी भाषा में कहते हैं अल्लाह नूर है, नूरे इलाही है। क्रिश्चियन भाई बहने भी स्पष्ट कहते हैं गॉड इज लाइट। जीसस क्राइस्ट ने स्पष्ट कहा है आई एम ए सन ऑफ गॉड। इसलिए क्रिश्चियन भाई बहने भी मोमबत्ती जलाते हैं और उस ज्योति की प्रेजेंस में प्रेयर करते हैं। सिख भाई बहने, वो तो आप देखिए पूरा ग्रंथ साहब एक निराकार की महिमा से भरा हुआ है। एक ओमकार निराकार सतनाम कर्ता पुरुष अयोनिज निर्भय निर्वैर कहकर एक निराकार को याद करते हैं। तो विश्व के मुख्यतः जो भी धर्म है उनके जो मूल धर्म स्थापक है, इवन गौतम बुद्ध को देखिए, महावीर स्वामी को देखिए, उनको ध्यान मुद्रा में दिखाते हैं वो किसके ध्यान में बैठे हैं, किससे बुद्धत्व प्राप्त हुआ। वो है परम चैतन्य शक्ति परमात्मा से, जिससे अवेयरनेस प्राप्त होती है, आत्मा जागृति होती है। तो विश्व के मुख्यतः जो भी धर्म है, उनके मूल धर्म स्थापकों ने एक ही इशारा दिया है कि परमात्मा एक है, निराकार दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप है। उनको हमारे जैसा शारीरिक प्राकृतिक आकार नहीं है, इसलिए हमारी तुलना में उनको निराकार कहा जाता है। निराकार का अर्थ ये नहीं है कि उनका अपना कोई आकार नहीं है, उनका दिव्य आकार है ज्योति बिंदु स्वरूप। अति सूक्ष्म आकार बिंदु को ही कहते हैं ना, कि जिसकी कोई चौड़ाई नहीं है, लंबाई नहीं है, गहराई नहीं है, पॉइंट ऑफ लाइट एंड माइट है। इसलिए बुद्धि में स्पष्ट कर लीजिए, हम सर्व आत्माओं के परम पिता परमात्मा दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप है। जैसे मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, मेरे अविनाशी पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। उनको हमारे जैसा शरीर नहीं है, इसलिए हमारे जैसा संज्ञावाचक शारीरिक नाम भी नहीं है। हमारे नाम शरीर से है। ये शरीर छूट जाएगा तो मेरा ये नाम भी समाप्त हो जाएगा। मैं नया शरीर लूंगी, मुझे नया नाम मिलेगा। हमारे नाम शरीर से है। परमात्मा का नाम गुणवाचक है, कर्तव्यवाचक है। उनका मूल स्वकथित असली नाम शिव है। शिव मीन्स कल्याणकारी, शिव मीन्स कल्याणकारी, सारे विश्व का कल्याण करते हैं, इसलिए परमात्मा को शिव कहते हैं। जिसको यहाँ हम सभी प्यार से शिव बाबा कहते हैं। बाबा मीन्स पिता, पिता को बाबा कहते हैं ना। बाबा मीन्स कोई साधु बाबा की बात नहीं है, बाबा माना पिता। परमात्मा हमारा पिता है, हम आत्माएं उनके बच्चे हैं। हमारे लिए सबसे खुशी की और गर्व की बात यही है कि हम आत्माएं ईश्वरीय संतान है। भक्ति में उनके अनेक गुणवाचक कर्तव्यवाचक नाम बनाए हैं, अमरनाथ, सोमनाथ, काशी विश्वनाथ, पशुपतिनाथ, भोलानाथ, वैद्यनाथ, ये उनके अनेक नाम है। हम उनको महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, विश्वेश्वर, मुक्तेश्वर, पाप कटेश्वर कहते हैं। ये इनके अनेक गुणवाचक कर्तव्यवाचक नाम है, परंतु है तो सभी शिवालय जहां ज्योतिर्लिंगम प्रतिमा को पूजा जाता है। हमें ये अनेक नामों को याद करने की, रटने की आवश्यकता नहीं है। हम उनके मूल एक नाम को याद रखते हैं, कल्याणकारी शिव, जिसको हम सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। परमात्मा सत्य है, अविनाशी है, वो है ही है, अविनाशी है। जैसे हम आत्मा अविनाशी है, परमात्मा सत्य है, अविनाशी है। शिव कल्याणकारी है, सुंदर मीन्स सदा पावन है, सदा स्वतंत्र है, इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। प्यार से हम शिव बाबा कहकर याद करते हैं। उनके गुणों की अपरंपार महिमा है। भक्ति में भी हम कहते हैं, तेरी महिमा अपरंपार। हम कहते हैं ना कि सारी पृथ्वी का कागज बना दिया जाए, पूरे समुद्र की स्याही बना दी जाए, हर वृक्ष की डाली की कलम बना दी जाए, और स्वयं ज्ञान की देवी, विद्या की देवी सरस्वती निरंतर लिखती रहे, तदपि हे ईश तव गुणानाम पारम न याति। तेरी महिमा अपरंपार कहते। तो स्वयं परमात्मा ने अपना महिमा गुण बताया है कि परमात्मा संपूर्ण सत्य ज्ञान के सर्व ईश्वरीय गुणों के और सर्व अलौकिक शक्तियों के सागर है, अखुट भंडार है। ऐसे ज्ञान गुण शक्तियों के सागर और दाता के बच्चे हम आत्माएं हैं, हम कैसे होने चाहिए। भक्ति में हम वर्णन करते हैं ना, तू प्यार का सागर है, इतनी शक्ति हमें देना दाता। हम उसको ऑल माइटी सर्वशक्तिमान कहते हैं, सर्व के सदगति दाता कहते हैं, दुख हरता सुख करता कहते हैं, मुक्त मुक्ति दाता, शक्ति दाता, सद्गति दाता कहते हैं। तो ऐसे ज्ञान गुण शक्तियों के सागर और दाता परमात्मा पिता के हम बच्चे हैं। हमें कितना खुशी और गर्व होना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी आइडेंटिटी ये है कि हम भगवान के बच्चे हैं। क्या हमें ये खुशी है? क्या हमें ये नशा खुमारी है? हम भगवान के बच्चे हैं। देखो कोई नहीं बोलते, हाँ सिद्ध है, किसी को वो खुशी गर्व नहीं है, क्योंकि खुद को ही भूल गए, अपने पिता परमात्मा को भी भूल गए। देह अभिमान है और दुनियावी आइडेंटिटी के नशे में रहते हैं कि हम तो मिनिस्टर हैं, एमएलए हैं, ऑफिसर हैं, उद्योगपति हैं, हम तो डॉक्टर हैं। हमें दुनियावी कार्यों का नशा है, पर हम अपनी रियल आइडेंटिटी को भूल गए हैं। इसलिए पिता परमात्मा को भी भूल गए, हमारे उनके साथ कोई प्रैक्टिकल रिलेशन नहीं रहे हैं, इसलिए प्राप्ति नहीं है तो खुशी भी नहीं। वास्तव में हमारा सही परिचय ये है, हमें ये गर्व हो, सदा ये स्मृति हो, इस खुशी में हमारा मस्तक सदा उन्नत हो कि हम उस परम चैतन्य शक्ति परमात्मा के बच्चे हैं। ऐसे ज्ञान गुण शक्तियों के सागर, अखुट भंडार और सदा दाता परमात्मा कौन सा कार्य करते हैं? वे कोई अल्पकाल की रिद्धि सिद्धि चमत्कार नहीं करते हैं। लोग सोचते हैं परमात्मा है तो मुर्दे को जिंदा कर दे, बीमार को ठीक कर दे, नुकसान को नफे में बदल दे, हम नापास हुए हैं हमें पास कर दे। परमात्मा ऐसी रिद्धि सिद्धि चमत्कार नहीं करते हैं। ये सब मनुष्य गुरु भी करते हैं। परमात्मा वो कार्य करते हैं जो कोई मनुष्यात्मा, धर्मात्मा, महात्मा, देवात्मा नहीं कर सकते हैं। चित्र में बताया है परमात्मा का दिव्य कार्य है हम पतित मनुष्यात्माओं को पावन बनाना। जब सारा विश्व विकारों के पंजे में फंस जाता है, हर मानव मन पर जब विकारों का आधिपत्य हो जाता है, जब सारा विश्व पतित भ्रष्ट बन जाता है, तब स्वयं परमात्मा सृष्टि पर आते हैं, सत्य ज्ञान का प्रकाश देते हैं। उस ज्ञान और योग की शक्ति से हमें पतित से पावन बनाते हैं। अपवित्रता ही विश्व के पतन का मूल कारण है, दुख शांति का मूल कारण है। इसलिए परमात्मा आकर सत्य ज्ञान देते हैं, हम आत्माओं को जगाते हैं, पतित से पावन बनाते हैं। हम मनुष्य आत्माओं को देवात्मा बनाते हैं। आज हम अधम पतित भ्रष्ट बन गए हैं, जिसको ही असुर कहा जाता है। असुर कोई अलग योनि के भयानक प्राणी नहीं है। देवताएं कोई आसमान में काल्पनिक नहीं है। हम मनुष्य आत्माएं ही दिव्य गुणों और पवित्रता से संपन्न थे। हम ही देवता गाए जाते थे। तब संसार स्वर्ग सतयुग कहा जाता था। भारत ही स्वर्ग था, इसलिए भारत भूमि को देव भूमि कहा जाता है। हम ही देवताएं थे, संसार स्वर्ग था। जन्म मरण के चक्र में आते आते द्वापर युग से जब हम पवित्रता और दिव्य गुणों को गंवा देते हैं, तब देह अभिमान के वश पतित बनते जाते हैं। और देह अभिमान में आकर जब हम अनेक प्रकार के विकारों, अवगुणों, बुराइयों, कमजोरियों, व्यसनों के वशीभूत हो जाते हैं, हम पतित भ्रष्ट बन जाते हैं और संसार नरक हो जाता है। इसलिए परमात्मा हमें असुर से सच्चा मानव पवित्र योगी बनाते हैं। और जो मनुष्य आत्माएं पवित्र योगी बनकर दिव्य गुणों की धारणा का और सत्कर्मों का प्रैक्टिकल आचरण करते हैं, वे ही सतयुग में जाकर देवी देवता बनते हैं। इसलिए परमात्मा पतित से पावन बनाते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं और संसार को स्वर्ग बनाते हैं। विश्व परिवर्तन का कार्य विश्व पिता परमात्मा ही करते हैं, ज्ञान बल, योग बल और पवित्रता के बल से। जब हम मनुष्य आत्माएं पावन बनती हैं, तो क्रमशः ऑटोमेटिक हमारी पवित्रता के बल से, योग बल से, फिर पशु पंछी प्रकृति जगत भी परिवर्तन होता है, पुनः पावन सतोप्रधान बनता है। तो ये है परमात्मा का दिव्य कर्तव्य। ऐसे पिता परमात्मा के हम आत्माएं बच्चे हैं। जब पिता परमात्मा विश्व को पावन बना रहे हैं, तो हमारा भी कर्तव्य है। हम उनके बच्चे, हम स्वयं पवित्र मात्र योगी बने और विश्व को पावन बनाने के कर्तव्य में परमात्मा पिता के हम मददगार साथी बन जाएं। ऐसा कार्य करने के लिए स्वयं परमात्मा सृष्टि पर आते हैं, अवतरित होते हैं। अगर परमात्मा इस सृष्टि पर कभी आते ही ना हो, हमें मिलते ही ना हो, तो हम उनको क्यों याद करते हैं? जरूर वे हमें कभी मिले हैं, हमने उनसे सुख पाया है, तब तो हम उनको याद करते हैं। वो आते ही ना हो तो हम उनके अवतरण का गायन क्यों करते हैं? हम उनको क्यों बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ, हमें पतित से पावन बनाओ? क्यों हम उसको याद करते हैं? जरूर खुद आते हैं, तब तो खुदा कहे जाते हैं। तो परमात्मा सृष्टि पर कब आते हैं? कब आते हैं? हरेक भारतवासी जानते हैं कौन सा श्लोक गाते हैं। हाँ, देखो, हरेक भारतवासी जानते हैं कि जब जब धर्म की अति ग्लानी होती है, अधर्म अति फैल जाता है, तब स्वयं परमात्मा सृष्टि पर आते हैं। अब मेरा आपसे प्रश्न है कि जब जब माना एग्जैक्टली कब? जब जब माना कब? धर्म की अति ग्लानी कब होती है? कलयुग के अंत समय। इसलिए कलयुग का अंत अति धर्म ग्लानी का समय है। जब कलयुग अंत सतयुग के आदि के संधिकाल संगम युग में परमात्मा सृष्टि पर आते हैं। चित्र में ये बताया है, ये वर्ल्ड साइकिल है, पूरे 5000 वर्ष का, 4 स्टेजेस से गुजरता है, 4 युग बताए जाते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग। कलियुग अंत और सतयुग आदि के संधिकाल संगम युग में परमात्मा सृष्टि पर आते हैं। हम कलियुगी पतित मनुष्यात्माओं को सत्य ज्ञान और योग के शक्ति से पवित्र योगी बनाते हैं। इस महापरिवर्तनकारी वेला के समय परमात्मा के आदेश को मानकर जो कलियुगी पतित मनुष्यात्माएं पवित्र योगी बनते हैं, वे ही आने वाली नई दुनिया सतयुगी दुनिया में जाने के लिए योग्य बनते हैं। तो वर्ल्ड साइकिल में ये मोस्ट वैल्यूएबल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट समय चल रहा है जिसको कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। जब परम पुरुष परमात्मा स्वयं सृष्टि पर आते हैं और हम मनुष्यात्माओं को उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम नर से श्री नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी समान बनाते हैं। चित्र में बताया है, एक तरफ नर्क साधारण नर नारी जब परमात्मा के रचे हुए इस ज्ञान यज्ञ में खुद की बुराइयों को स्वाहा करते हैं तो वे ही सतयुग के लायक देवी देवता बनते हैं। भाइयों और बहनों, परमात्मा ने पिता श्री ब्रह्मा बाबा के द्वारा ये ज्ञान यज्ञ रचा है। आप सभी ज्ञान यज्ञ में आए हैं। ये कोई द्रव्य यज्ञ नहीं है, मटेरियल यज्ञ नहीं है, ये ज्ञान यज्ञ है। स्वयं परमात्मा ने ब्रह्मा मुख से जो सत्य ज्ञान दिया है वो ही आप सुन रहे हैं। इस ज्ञान और योग से हमें खुद की बुराइयों को छोड़ना है और सतयुग के लायक योग्य देवी देवता बनना है। पसंद है सबको? हाँ, ज्ञान सुन रहे हैं ना? और कोई क्रियाकांड बाह्याचार यहाँ नहीं है। परमात्मा का सत्य ज्ञान समझना है और स्व परिवर्तन करना है। ऐसा दिव्य कार्य करने के लिए परमात्मा हर 5000 वर्ष के बाद हर कलयुग के अंत सृष्टि पर आते हैं। स्पष्ट रहे, परमात्मा युगे युगे नहीं आते हैं। युगे युगे परमात्मा आते तो कलयुग कैसे हुआ? कलयुग कैसे आया? फिर परमात्मा ने युगे युगे आकर क्या किया? इसलिए परमात्मा हर युग में नहीं आते हैं। हर 5000 वर्ष के अंत, हर कलयुग के अंत संगम युग में परमात्मा सृष्टि पर आते हैं। अब परमात्मा आते हैं, अवतरित होते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ? परमात्मा इस दुनिया में नहीं रहते हैं। जरूर परमात्मा कोई और स्थान पर रहते हैं जहां से हर 5000 वर्ष के अंत कलयुग अंत संगम युग में सृष्टि पर आते हैं। तो बुद्धि में स्पष्ट कर लीजिए, परमात्मा इस दुनिया में ही होता तो हम क्यों कहते हैं कि वे अवतरित होते हैं, सृष्टि पर आते हैं? अगर वो यहाँ ही है तो आने की बात ही नहीं है ना। आप यहां हाजिर है तो मैं थोड़ी कहूंगी आप आएंगे, आप आते हैं, आप है ही है ना। परमात्मा इस दुनिया में व्यापक होता तो क्यों हम उनके अवतरण की बातें करते हैं। कल प्रथम लेसन में भी आप सभी ने समझ लिया है कि ये दुनिया हमारा भी घर नहीं है। हम मनुष्यात्माओं के लिए भी ये कर्म क्षेत्र है। हम आत्माओं का असली घर परम धाम है। वो ही पिता परमात्मा का भी असली घर है। इसलिए परम धाम से कलियुग अंत समय साधारण मानव तन ब्रह्मा तन में परमात्मा दिव्य प्रवेश करते हैं और ब्रह्मा मुख से हमारे अनेक जन्मों की भक्ति भावना का फल सत्य ज्ञान देते हैं, राजयोग सिखाते हैं, जिस ज्ञान योग की शक्ति से हमें पतित से पावन बनना है। परमात्मा आकर वो ही हमें पावन बना दे तो हर कोई सोचेगा कि भल पाप करते रहो, भगवान आएगा और हमें पावन कर देगा। नहीं, परमात्मा करण करावन हार है, वे तो निराकार है। वे आकर ब्रह्मा मुख से ज्ञान देते हैं, सत्य बताते हैं, सारे सनातन सत्यों का राज बताते हैं। उस ज्ञान और योग से हमें पतित से पावन बनना है, इसलिए उनको पतित पावन कहते हैं। तो ये दुनिया हमारा भी घर नहीं है, कर्म क्षेत्र है। तो परमात्मा इस दुनिया का वासी कैसे हो सकता है? इसलिए हमेशा हम क्या कहते हैं परमात्मा के बारे में, ऊपर वाला कहते हैं ना। हाँ, जब परमात्मा को याद करते हैं हमारी बुद्धि और नजर कहाँ जाती है? ऊपर जाती है। हम कहते हैं ऊपर वाला देख रहा है, एक दो को याद कराते हैं ना, ऊपर वाला देख रहा है। ऊपर वाला, यहां वाला नहीं, ऊपर वाला। इसलिए हम कहते हैं ऊंचे ते ऊंचा तेरा नाम, ऊंचे ते ऊंचा तेरा काम, ऊंचे ते ऊंचा तेरा धाम कहते हैं। दुनिया में भी पिता और बच्चों का असली घर एक ही होता है ना, बाद में अलग अलग होते हैं। ऐसे हम आत्माओं का और हमारे पिता परमात्मा का असली घर परम धाम है। चित्र में सबसे ऊपर लाल रंग से बताया है वो अखंड लाल ज्योतिर्मय ब्रह्म तत्व बताया है, जिसमें हम सर्व आत्माएं और हमारे पिता परमात्मा रहते हैं। ये पांच तत्वों की दुनिया है, ये फिजिकल वर्ल्ड है, भौतिक जगत है। हम आत्माएं भी परम धाम से अपने अपने रोल अनुसार सृष्टि पर आते हैं, मानव तन धारण कर कर्म करते हैं, कर्म फल भोगते हैं। हमारे लिए भी ये कर्म क्षेत्र है। हमारा असली घर परम धाम है। इसलिए पांच तत्वों से भी परे, सूर्य चांद सितारों से भी पार, प्रकृति का ये छठवां अति सूक्ष्म अखंड लाल ज्योतिर्मय ब्रह्म तत्व है। हम आत्माएं इस ब्रह्म लोक की निवासी है, परमात्मा भी इसी ब्रह्म लोक के निवासी है। तो ये है पिता परमात्मा का सत्य परिचय, जो स्वयं परमात्मा पिता ने ब्रह्मा मुख से हम आत्माओं को बताया है। ऐसे ज्ञान गुण शक्तियों के सागर दाता परमात्मा पिता को हमें कितना याद करना चाहिए, कितना याद करना चाहिए, हाँ, कितना याद करना चाहिए। परंतु क्या हम इतना याद करते हैं? नहीं करते हैं ना, क्योंकि देह भान में आकर हमारा बुद्धि योग देह संबंधों में, दुनियावी प्रवृत्तियों में और इस भौतिक जगत में ही लग जाता है। हम उस पिता को भूल जाते हैं। इसलिए जितना आत्मभिमानी बनते जाएंगे उतना पिता परमात्मा की याद में हम स्थित होते जाएंगे। इसलिए पहला अभ्यास आत्मचिंतन का सिखाया गया, ताकि हम सोल कॉन्शियस बनते जाएं, और जैसे ही आत्मभिमानी बनते जाएंगे हमें ऑटोमेटिक परमात्मा की याद आएगी, हमारा बुद्धि योग उनसे जुड़ता जाएगा। इस यथार्थ परिचय के आधार पर अब हम शिव बाबा की याद में बैठेंगे तो सभी व्यवस्थित बैठ जाएंगे। कल आप सबको बताया था, अपना डायरी, पर्स, फाइल, हैंडबैग, मोबाइल साइड में रख दें, एक दो से अलग होकर के बैठेंगे। हम शरीर से यहां बैठेंगे, मन और बुद्धि से असली घर परम धाम में जाएंगे। मन की आंख से, ज्ञान नेत्र से परम ज्योति बिंदु शिव बाबा को देखेंगे और मन ही मन अंतर्मुखी मन बुद्धि से पिता परमात्मा को याद करेंगे। ये नया अभ्यास है, इसलिए मैं कमेंट्री से गाइड करूंगी कि हमें साइलेंस में बैठकर कैसे मन बुद्धि से शिव बाबा को याद करना है। मुख से रिपीट नहीं करना है, जो विचार मैं दूं वो मन से फॉलो करना है, अर्थ समझना है, महसूस करना है, उस अनुभूति में स्थित रहना है। मैं एक आत्मा हूं, शरीर धारण कर इस सृष्टि कर्म क्षेत्र पर कर्म करती हूँ, कर्म फल भोगती हूँ। मेरा असली घर इस दुनिया से दूर, पांच तत्वों से पार परम धाम है, जहां पिता परमात्मा भी निवास करते हैं। मैं मन की आंख से, ज्ञान नेत्र से, परम ज्योति बिंदु शिव पिता को देख रही हूं। मेरे अति प्रिय परम पिता अनेक जन्मों से भक्ति में मैं आपको खोजती रही हूं। परंतु आपका सत्य परिचय कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ। मैं आत्मा मंदिर मंदिर, तीर्थ तीर्थ, आश्रम आश्रम, तन से भी भटकती रही, मन से भी ढूंढती रही। आज आपके सत्य परिचय को पाकर मुझे अपार खुशी हो रही है। अब मुझे स्पष्ट है मैं स्वयं कौन हूं। आप मेरे अविनाशी परम पिता कौन है? जीवन का सही ठिकाना मुझे मिल गया है। अब मेरी यही लगन है, निश्चय है मुझे आप जैसा बनना है। संपूर्ण सत्य ज्ञान के सागर सत्य ज्ञान दाता मेरे प्यारे शिव पिता, अब मुझे भी ज्ञान स्वरूप आत्मा बन योगी बनना है। शांति के सागर, अखुट शांति के भंडार, विश्व शांति दाता मेरे प्यारे शिव बाबा, मैं आत्मा आपकी अमर संतान शांत स्वरूप हूं। मेरा स्वधर्म शांति है। मैं स्वयं शांत स्वरूप बन सर्वत्र शांति फैलाऊंगी। शांति दाता पिता की संतान मैं आत्मा शांति दूत हूं। प्यारे शिव बाबा, आप सदा पावन सर्वशक्तिमान हैं। आपकी याद से मैं आत्मा भी शुद्ध पवित्र बनती जा रही हूँ। मैं आपसे योग लगाती हूँ, मैं आपको याद करती हूँ, आपके साथ का अनुभव करती हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा बनती जाती हूँ। मैं निर्भय निश्चिंत होती जा रही। मैं आत्मा हूँ। पॉइंट ऑफ लाइट एंड माइट हूँ। मैं आत्मा शुद्ध हूँ, सत्य हूँ, मैं आपकी ईश्वरीय संतान हूँ। ॐ शान्ति।